हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मल्लिका और अमित दोनों एक दूसरे से मन ही मन में बातें करने लगे थे। अमित ने मल्लिका से कहा था, इस बूढ़े ने तो हमें पत्थर का बना दिया है। लतब अमित ने कहा था, अब तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब मेरे पास मेरी शक्तियाँ वापस आ गई हैं, तो मैं कैसे ना कैसे करके इस बंधन से ज़रूर मुक्त हो जाऊँगा। अमित की बात सुनकर मल्लिका चौंक हो गई थी और बोली थी, लेकिन अब हम क्या करें, क्योंकि मेरी शक्ति अभी कोई काम नहीं कर रही है, और अगर यहाँ पर हमें किसी ने देख लिया तो किसी को भी हम पर शक हो सकता है। ऊपर से हम अदृश्य नहीं हैं, हम सब लोगों की आंखों के सामने हैं। मल्लिका की बात सुनकर अब अमित भी काफी परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। तभी अमित ने अपनी आंखों पर गौर किया। अमित ना तो अपनी आंखें बंद कर सकता था, न ही खोल सकता था, क्योंकि वो जिस हालत में था वो एकदम से जम कर रह गया था। इसीलिए उसने अपने दिमाग से ही मन में एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, और पूरे 40 मिनट तक एक ही मंत्र पढ़ने के बाद जब उसे उसके गुरु का रिमाइंड हुआ था और अमित के मंत्रों में आकर काली शक्तियों के गुरु ने अमित को कहा था कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी मदद करने के लिए किसी को भेज रहा हूँ। और तभी जैसे ही अमित ने ये सुना, उसे कुछ शांति हुई थी, और अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी दो काले रंग के एकदम भयानक बाज वहां आ गए थे, और उन्हें देखकर एक बार को तो मल्लिका को थोड़ी वहशत सी होने लगी थी। लेकिन अगले ही पल जब उसने देखा कि उन बाज के मुंह में कुछ था, और उन्होंने जैसे ही अपना चोंच खोली तो एक बाज की चोंच से पानी निकला जो कि मल्लिका के ऊपर गिरा था, और दूसरे की चोंच से भी पानी निकला जो कि अमित के ऊपर गिरा था। दोनों ने अलग अलग अमित और मल्लिका के ऊपर पानी गिरा दिया था, और उनका पानी गिरते ही जिन महाराज का जो जादू था वो टूट गया था और वो दोनों आज़ाद हो गए थे। तब अमित ने मल्लिका से कहा था, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि वो बूढ़ा एक बार फिर से हमें बंदी बना ले, हमें यहाँ से गायब होना होगा। ऐसा कहकर मल्लिका और अभी तो जल्दी ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वहाँ से गायब हो चुके थे। वहीं जिन महाराज को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि उनका जादू टूट गया है, तो उन्होंने तुरंत अपना दूसरा जादू फूंका था उन्हें बंदी बनाने के लिए, लेकिन वो 10 सेकंड लेट हो गए थे और तब तक वो दोनों काली शक्ति वहां से भाग गई थीं। मल्लिका और अमित दोनों एक साथ वहां से गायब हो चुके थे, और जिन महाराज यही सोचते रह गए थे, आखिरकार वो दोनों थे कौन और किसने उनकी रक्षा की। वो ये तो बस समझ गए थे कि ये जरूर काली शक्ति से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन काली शक्तियों वाले भी कितने ही सारे लोग थे जो तिलस्मी पत्थर के पीछे थे। लेकिन जिन महाराज को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ये कोई और नहीं बल्कि काली शक्तियों के गुरु के ही आदमी थे, पर कहीं न कहीं उन्हें शक जरूर हो चुका था। वेल, जल्दी ही मल्लिका और अमित अपने महल नुमा घर में पहुंच चुके थे। जैसे ही वो अंदर गए, वहां का नजारा देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। जितने भी अमित के सर्विस थे, जो असल में उसके जादुई गुलाम थे, उन लोगों को उस डायन ने काम पर लगा रखा था। वो डायन पूरी तरह से गुड्डी के शरीर में वास कर रही थी, तो उसने वहां पर सभी लोगों को कुछ न कुछ काम में लगाया हुआ था और खुद आराम से सोफे पर बैठी हुई ढेर सारा खाना खा रही थी। उसने अलग अलग तरीके के चिकन्स मंगवा रखे थे। जैसे ही मल्लिका ने ये देखा, उनसे उल्टी करने का मन हो रहा था, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से सभी चिकन्स को खा रही थी। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित भी समझ चुका था कि वाकई उसकी शादी किसी डायन से हुई है। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि आखिर उसने इतनी जल्दी क्यों की थी। एक सीधी सारी लड़की लाने के चक्कर में वो अपने गले में एक बहुत बड़ी आफत बांध ली थी, और वो इतनी आसानी से उसका पीछा भी नहीं छोड़ने वाली थी। ये बात उसके गुरु ने उसे समझा दी थी कि उसे तुम प्यार से ही अपना पीछा छुड़ा सकते हो, उस मुकाबला करके तुम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, क्योंकि एक तो वो 200 साल पुरानी डायन है जिसके अंदर काफी सारी शक्तियां हैं, और अब तो आधी शक्ति तुम्हारी भी उसके अंदर है, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो अब कितनी खतरनाक है। वेल, जैसे ही उस डायन की नज़र अमित पर पड़ी, उसने बुरी तरह से खाना बंद कर दिया था और जल्दी से अपना मुंह हाथ पोंछकर वो अमित के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। और जैसे ही उसने मल्लिका को अमित के साथ में देखा तो उसकी आंखों में अंगारे बरसने लगे थे और वो मल्लिका को कड़ी गड़ी नजरों से देखने लगी थी। काली शक्तियों का मालिक अमित इस बात को भांप चुका था कि ये मल्लिका को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। तब उसने उस डायन से कहा था, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तब वो डायन अमित से बोली थी, स्वामी स्वामी आप आ गए, आप देख ये आपके जो नौकर है घर का कोई भी काम नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने सभी को काम पर लगा दिया है और देखो कितना अच्छा घर चमका दिया है इन लोगों ने। ऐसा कहकर वो अपनी तारीफ करने लगी थी और बोली थी, स्वामी आप इस लड़की को साथ में क्यों लेकर आए हैं? ऐसा तो मैंने घर से निकाल दिया था। आप जानते हैं ना, मैं आपके और अपने बीच में किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसे लड़की की बातें सुनकर अमित के सर में दर्द हो रहा था। उसका दिल तो जा रहा था कि वो उसने जो उसे धोखा दिया है उसके बदले में उसे कैड़ी सजा दे, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था अगर उसने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए वो खुद के इमोशन पर कंट्रोल करते हुए झूठी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए उसके बोला था, बेबी तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर आराम करने के लिए लाया हूँ, तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। और ये लड़की मेरा सारा काम संभालती है, ये मेरी असिस्टेंट है, इसीलिए यहाँ रहती है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ। अगर ये लड़की इस घर से चली गई तो मेरा करोड़ का नुकसान हो जाएगा। अमित ने झूठ बोलकर मल्लिक को अपनी असिस्टेंट बताते हुए उसे डायन के सामने पेश किया था। मल्लिका को मन ही मन में अमित के इस तरह से बात करने पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल किए हुए खड़ी रही थी। वो खुलकर हंस भी नहीं सकती थी। तभी वो लड़की मल्लिका की ओर देखते हुए बोली थी, अच्छा असिस्टेंट है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आप इसे यहाँ रख सकते हैं, लेकिन आप इसे साफ साफ कह दे ये आपके आस पास ज्यादा मुझे नजर न आए और आपसे ज्यादा चिपके न रहे, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तब काली शक्तियों के मालिक अमित ने कहा था, नहीं नहीं तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेबी, मेरी शादी तुमसे हुई है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब तुम जा अपने कमरे में जाकर आराम करो, वैसे भी तुमने ये थोड़ा बहुत ही खाना क्यों खाया है, ये खाकर अब तुम्हारा पेट भर गया है तो तुम्हें अच्छे से नींद भी आएगी, तो तुम जाकर आराम करो। अमित की बात सुनकर वो लड़की अपने पेट पर हाथ फेरने लगी थी, वाह वाह मीता आपने देखा मुझे इन नौकरों ने मुझे कितना कम खाना ला कर दिया है, जबकि मुझे बहुत भूख लगी थी, ये नौकर किसी भी काम के नहीं है, उसने काम कर रहे कुछ नौकरों की ओर इशारा किया था।
तभी काली शक्ति के मालिक अमित ने एक काम कर रहे नौकर को अपने पास बुलाया था और बोला था, ये सब क्या है, तुमने इतना कम खाना लाकर क्यों दिया है, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ, अमित की बात सुनकर वो नौकर हैरानी से कभी अमित को देख रहा था तो कभी उसे डायन को देख रहा था और फिर बोला था, मलिक जितना भी होटल में खाना था वो हम सभी यहाँ ले आए थे, इतना ही नहीं हमने शहर के 3 बड़े होटल से खाना लेकर आए थे और जितना भी उन लोगों के पास मांस मछली था वो सब उन्होंने हमें दे दिया था, लेकिन मैडम की भूख तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है, ये पूरे 200 लोगों का खाना अकेले खा चुकी है। जैसे ही अमित ने ये सुना उसका हैरानी के मारे मुंह बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था और वो मल्लिका की ओर देखने लगा था। मल्लिका की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, मल्लिका को समझ में नहीं आ रहा था कि ये दुबली पतली लड़की 200 लोगों का खाना खा सकती है। और तभी मल्लिका और अमित की नज़र टेबल के नीचे पड़ी हुई खाली प्लेटों पर गई, जिन्हें देखकर वो अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनका नौकर जो कुछ भी कह रहा था वो सच कह रहा था। तब काली शक्तियों का मालिक अपने मुंह पर एक झूठी स्माइल लाते हुए उस लड़की से बोला था, बेबी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम आराम करके उठोगी तब तक मैं तुम्हारे लिए और ढेर सारा खाना ले आऊंगा, ओके तुम जाओ अब जाकर आराम करो। अमित की बात सुनकर वो अमित की ओर देखते हुए बोली थी, हाँ हाँ स्वामी ठीक है मैं जाती हूँ और आप भी जल्दी आ जाएगा। उसने कुछ इस तरह से बोला था कि अमित को उल्टी करने का मन कर रहा था, क्योंकि वो इशारों में अमित को अपने पास आने के लिए कह रही थी और अमित एक बार उसके पास आने की गलती कर चुका था और उसका खामियाजा भी भुगत चुका था अपनी शक्तियों को दांव पर लगाकर। इसलिए अमित अब किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और जल्दी वो लड़की अपने कमरे में चली गई थी और अमित ने उसके जाते ही एक गहरी सांस ली थी। तब मल्लिका ने जैसे ही अमित के कंधे पर अपना हाथ रखा अमित एकदम से डर के मारे चिल्ला उठा था, लेकिन अगले ही पल मल्लिका को देखकर उसने राहत की सांस ली थी, क्योंकि थी, उसे ऐसा लगा था कि शायद वो वापस आ गई थी। मल्लिका का दिल अमित की हालत को देखकर जोरों से हंसने को कर रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी अगर वो उसने अमित के सामने हंसना शुरू किया तो अमित उसका क्या हाल कर सकता था। तब अमित ने मल्लिका से कहा था, तुम चलो मेरे साथ, इसका क्या करना है, इसके बारे में कुछ प्लान बनाते हैं। ऐसा कहकर वो मल्लिका को अपने कमरे में ले गया था। वहीं दूसरी ओर तारा परी को अनुष्ठान करते हुए 9 घंटे हो चुके थे, अब केवल 2 ही घंटे बाकी थे। और अगर अगले 2 घंटे तारा परी अनुष्ठान पूरा कर पाती है तो फिर उसे पता चल जाएगा कि आखिरकार अमन के पिताजी कहाँ पर हैं। अब बस ज्यादा देर नहीं थी और इन 9 घंटे में विक्रांत रंधावा एक पल के लिए भी तारा परी के सामने से नहीं हटा था। वह के वहाँ बैठकर उसे ही देखता रहा था। और जब 10 घंटे पूरी हो चुके थे और तारा की तपस्या का आखिरी घंटा चल रहा था, तभी उसके कमरे में किसी के होने का एहसास होने लगा था, जिसे विकृत रंधावा ने देख लिया था।